थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सपन्या नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने प्रिय परिवारों के सदस्यों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से सपन्याह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहूदा देश को दंड देता है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अधिक सीखेंगे, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, एक दूसरे को नहीं देख सकते, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि रेडियो के माध्यम से आपके वचन को हम सुन सकते हैं। पिताजी, इस घड़ी हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में कार्य करने पाए, ताकि संसार की तमाम बुराइयों से वे छुटकारा पाकर पवित्रता, नम्रता, दीनता का जीवन जी सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और चिंता में हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें छुएं, चंगाई और छुटकारा दें, उनके हरेक पाप अपराधों को आप क्षमा करें, आज के वचन के द्वारा उनसे बोल और बातचीत करें ताकि वे आपकी सत्यता को जानकर आपको अपने जीवन में जगह देने पाएं। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर यहूदा को दंड देने की ठान चुका था। वे तो सोच रहे थे कि परमेश्वर चिंता नहीं करता है कि वे क्या करते हैं। वह न तो भला करता है और न ही बुरा करता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उनको ढूंढ ढूंढ कर दंड देगा। उनकी संपत्ति लूटी जाएगी, उनके घर उजाड़े जाएंगे, वे अपने दाख नहीं खा पाएंगे, उनके वीर दुख के मारे चिल्लाएंगे, उनका लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंका जाएगा। न सोना न चांदी उन्हें बचा पाएंगे। परमेश्वर की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के निवासियों को घबरा देगा और उनका अंत कर देगा। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वह न्यायी है और धर्मी है। आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सपन्याह की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका विषय है पृथ्वी और सब जातियों को दंड। परमेश्वर अपनों ही को नहीं, सब जातियों को दंड देता है, सब देश को दंड देता है। इस अध्याय और अध्याय 3 उसके पद 8 तक का यही विषय है। परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी है, धीरजवंत है और वह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, अतः वह अंतिम पुकार करता है। मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के धीरज का बांध टूट गया है, परंतु प्रथम 3 पदों में आप देखेंगे कि परमेश्वर यहूदा को मन फिराओ और उसके निकट आने की अंतिम चेतावनी या बुलाहट और पुकार देता है। तो आइए हम पढ़ें सपन्याह 2 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, हे निर्लज जाति के लोगों इकट्ठे हो। ध्यान दीजिए, लिखा है इकट्ठे हो, उनके एकत्र होना, या यूं कहें कि उन्हें एकत्र करना। डॉक्टर चार्ल्स फेनवर कहते हैं, धर्म सभा करें कि परमेश्वर के अनुग्रह की याचना करें, जिससे कि प्रार्थना सुनकर वह अपना दंड रोक ले, क्योंकि वह कहता है, हे निर्लज जाति के लोगों इकट्ठे हो। मेरे प्रियो, उनके पाप ने परमेश्वर को दंड देने पर बाध्य किया था, मजबूर किया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि वे उसके मन से उतर गए थे या उनसे वह प्रेम नहीं करता था। उनके पाप के कारण उन्हें दंड मिलना अवश्य था। पाप के कारण वे घृणित हो गए थे, परंतु वे अपनी पापी दशा को देख नहीं पा रहे थे, जैसा कि आज भी लोग अपने जीवन के उस पापमय स्थिति को नहीं देख पाते हैं। वे लज्जा से पूर्ण रूपेण रहित थे, उनमें मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं थी, उनमें पाप का बोध नहीं रह गया था, वे निर्लज्जता से पाप करते ही रहते थे, वरन पाप करने का वे गर्व करते थे। मेरे प्रियो, आज हमारी भी यही दशा है। पहले हमारे पाप पर्दे के पीछे हुआ करते थे, परंतु अब खुले आम हो रहे हैं। हम पाप का गर्वपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। कोई स्त्री कहती है कि वह बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रहती है, तो उनकी प्रशंसा की जाती है कि वह साहसी है, वह विकसित मानसिकता रखती है। कोई उसे निर्लज्ज या पापी नहीं कहता है। पहले तो कभी पाप का दोषी विवेक था, परंतु आज पाप का विवेक ही नहीं रह गया है। हम नहीं समझ पा रहे हैं या समझ रहे हैं कि परमेश्वर पाप से कैसी घृणा करता है। हमारे पास पाप पर रोने का समय भी नहीं है। जी हां, आज संसार पाप में डूबता और बढ़ता ही चला जा रहा है। सपन्याह 2 अध्याय उसके 2 पद में कहता है, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम इकट्ठे हो। परमेश्वर कहता है प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो, मन फिराव के लिए इकट्ठे हो, इकट्ठे होकर मेरे पास आओ। यहां आपातकालीन स्थिति है। जी हां, इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें दंड देना आरंभ कर दे, पश्चाताप करने के लिए उनसे कहता है, क्योंकि यदि आप रेखा पार कर लें और परमेश्वर आपको दंड दे तब बहुत देर हो जाएगी। आज एक आवाज की आवश्यकता है जो हमें प्रार्थना और मन फिराव के लिए चिताए। परमेश्वर प्रार्थना सुन करके उत्तर देता है। मेरे प्रियो, यदि आप पाप पर पाप करते जा रहे हैं और आपको कोई चेतावनी देने वाला नहीं है तो आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप सही कर रहे हैं, परंतु यदि कोई आपको चेतावनी देता है, आपको आगाह करता है, आपको सचेत करता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं गलत है और आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। यही कार्य प्रभु यहां पर अपने लोगों के लिए कर रहा है। उन्हें मौका दे रहा है कि वे मन फिराएं, प्रार्थना करें, इकट्ठे हों, ताकि वह उन्हें दंड ना दे। सपन्याय की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। कहता है हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, उसको ढूंढते रहो। परमेश्वर के निष्ठावान सदा ही अल्पसंख्या में रहे हैं, कलिसिया में भी अल्पसंख्यक विश्वासी हैं। शायद ही कुछ ऐसे हैं या ऐसी कोई कलिसिया ना हो जिसमें कुछ विश्वासी ना हो। परमेश्वर के पास अल्पसंख्यक विश्वासी सदा ही होते हैं और यहां भी परमेश्वर अल्पसंख्यक यहूदा वासियों को संबोधित करता है जो उसके प्रति आत्मनिष्ठा रखते हैं। कहता है धर्म को ढूंढो। इन अल्पसंख्यकों को अपने जीवन के प्रति अति सावधान रहना है। कहता है नम्रता को ढूंढो। जी हां, उन्हें घमंड, हट और आत्माभिमान से बचना है, क्योंकि उस देश का यही सबसे बड़ा पाप था। आज के विश्वासियों में भी यह एक विडंबना है। कहा जाता है कि हम में जात पात का, रूप रंग का, मर्यादा का घमंड है। कुछ विश्वासियों को अनुग्रह द्वारा उधार पाने का भी घमंड है। वे सोचते हैं कि यह उनके लिए गर्व का कारण है। वे सोचते हैं कि उधार के कारण वे परमेश्वर के पिट्ठू हो गए हैं। मेरे मित्रों, हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। पौलुस के पास घमंड करने का कोई कारण नहीं था, तो हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान होने का घमंड खतरनाक होता है। हमें तो दीन बनना है। सपन्या कहता है कि धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। आज आप किसको ढूंढ रहे हैं? आगे कहता है संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। जी हां, यह एक महान एवं महिमामय बात है कि हम परमेश्वर के पंखों तले अपनी चट्टान के दर्रे में शरण लें। परमेश्वर की संतान को यह बोध तो अवश्य होना है कि उन्हें भी बहुत दंड और कष्टों का सामना करना होगा, चाहे वे महाक्लेश से न गुजरें। यद्यपि यहूदा वासियों को महाक्लेश का कष्ट नहीं भोगना पड़ा, परंतु उन्हें, जैसा मैं कहता हूं, लघु क्लेश में होकर के गुजरना पड़ा। अर्थात लघु क्लेश यानी कि छोटा क्लेश तो उन्हें भोगना ही पड़ा। हम सब इस जीवन में क्लेश भोगेंगे, किसी धनवान स्त्री की सेविका कष्टों में थी और वह लगातार अपने कष्टों का बखान करती थी, तो उसकी मालकिन ने उसे टोका। इस पर उसने कहा, जब भला परमेश्वर मुझे क्लेश देता है तो मैं क्लेश उठाना चाहती हूँ। प्रेरित पौलुस कहता है, हम इस देह में कहरते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम महाक्लेश में हैं और न ही हम महाक्लेश के समय रहेंगे। मेरे मित्रों, पद 4 से अध्याय 3 के पद 8 तक का यह अंश विभिन्न जातियों के दंड का उल्लेख करता है। इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर पृथ्वी की सब जातियों को दंड देता है। बाइबल का परमेश्वर किसी एक स्थान में सीमित नहीं है। अतः जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वचन को बांटते हैं, तब हमें किसी पर अपनी जीवन शैली नहीं थोपना चाहिए, न ही अपने रीति रिवाज। प्रभु यीशु सबके लिए मरा है, क्योंकि हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, वह एक देश, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं, परंतु सारे जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, लोगों को सच्चाई बताना। मानना ना मानना यह आपकी बात है। विश्वास लाने वाले अपनी सभ्यता का विकास अपने ही रीति रिवाजों में करें। बाइबल का परमेश्वर संपूर्ण जगत का परमेश्वर है। वह सृष्टि और मनुष्य का सृजनहार है। वह मनुष्य का तारणहार है। ध्यान दें कि वह अपने ही लोगों का नहीं, परंतु संपूर्ण मनुष्य जाति का न्याय करेगा, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। वह यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों को भी पाप का दंड देगा। परमेश्वर ने कुछ मानदंड स्थापित किए हैं जो वैश्विक मानक बन गए हैं। ये मूसा को दी गई 10 आज्ञाएं हैं। यद्यपि सब जातियां सही और गलत को समझती हैं, उनमें समझ का अंतर है। मुझे एक प्रचारक ने बताया कि वह नरभक्षियों में प्रचार करता है और उन आदिवासियों में ईमानदारी बहुत अधिक है। यदि आप अपना पैसा उनके मध्य छोड़ दें तो वे उसे छुएंगे नहीं, परंतु अपनी सांस को रोके रखेंगे। मेरे प्रियो, एक महिला ने अपना बटुआ किसी दुकान में छोड़ दिया। जब वह तुरंत लौट करके आई तो वह वहां नहीं था। निश्चय ही वह चोर सभ्य है, क्योंकि वह अपने उस बटुए को सेंक कर नहीं खाएगा। आचार संहिता हर एक जाति में है, परंतु जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए तो वह इतना दूर निकल जाता है कि परमेश्वर को उसे त्यागना पड़ता है। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि मनुष्य बहुत क्षेत्र में ईमानदार है, परंतु वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसका कारण यही है कि वह पाप को नहीं समझ पाता, और कई बार समझकर भी वह पाप पर पाप करता चला जाता है। सपन्या 2:4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्लोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दुपहरी निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। यहां पर 4 फलिस्ती नगरों का उल्लेख किया गया है। कोई पूछेगा कि उसने गत नगर का उल्लेख क्यों नहीं किया, वह तो एक मुख्य नगर था। उस समय गत नगर यहूदा के अधीन था, अतः फलिस्ती नगर ये 4 हैं, गाजा, अश्कलोन, अश्दोद और एक्रोन। लिखा है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अस्कलोन उजाड़ हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज गाजा वास्तव में एक निर्जन स्थान है और अस्कलोन उजाड़ पड़ा है। आज जिस स्थान को अस्कलोन कहते हैं वह पुराने नगर के खंडहरों पर नहीं बसा है। प्राचीन अस्कलोन समुद्र के निकट था। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वहां दागोन देवता के मंदिर का खंडहर है। यहां पर हम देखते हैं अश्दोद के निवासी दिन दोपहरे निकाल दिए जाएंगे। अश्दोद में गर्मी के कारण दोपहर के समय विश्राम का अंतराल होता था, जैसा आज भी कहीं कहीं पर बाजारों में होता है। सपन्या के कहने का अर्थ है कि उन पर संकट अकस्मात ही आ पड़ेगा। वह नगर आज पूर्ण रूप से ध्वंस है और इसराइल की सीमा में है। इसराइल ने वहां मकान बनाए हैं और तेल की रिफाइनरी भी लगाई है। वहां उन्होंने बंदरगाह भी बनाया है जो उस क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है, परंतु उस युग में वह पूर्ण रूप से ध्वंस किया गया था। आज उसके खंडहर भी नहीं है। लिखा है एक्रोन उखाड़ा जाएगा। एक्रोन का नामोनिशान भी मिट गया है। सपन्याह के पुस्तक 2:5 में हम पढ़ते हैं, समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय, हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। कहता है समुद्र तट के रहने वालों पर हाय। ये सब स्थान समुद्र के निकट थे। लिखा है करेती जाति पर हाय, ये क्रेते द्वीप से आए थे और पलिश्ती कहलाते थे। इब्रानी भाषा में पलिश्ती शब्द का अर्थ है अप्रवासी। वे उस देश में बाहर से आए हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि इसराइल को क्या अधिकार था कि वे पलिश्तियों को बाहर करें। उन्हें अधिकार था क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब उनसे पहले वहां वास करते थे। जी हाँ, उनका मिस्र पलायन तो बहुत बाद की बात है। उनके परदेश वास के समय पलिश्ती वहां पर आए थे। लिखा है हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि कोई नहीं बचेगा। आपने कभी किसी पलिश्ती को देखा है? वे विलोप हो गए हैं। मेरे मित्रों, सत्यानाश परमेश्वर की ओर से आता है और यह पाप का परिणाम होता है। सपन्या 2:6 में लिखा हुआ है, उसी समुद्र तट पर चरवाहों के घर होंगे और भेड़शालाओं समेत चराई ही चराई होगी। मेरे मित्रों, ऐसा ही हुआ है और 2000 वर्ष पूर्व से वहां की यही स्थिति है। सपन्या 2:7 में आगे लिखा है, अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे, वे अश्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लौटेंगे और लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वह अपनी प्रजा को स्वदेश लौटा लाएगा और वे पलिश्तियों के क्षेत्र पर निवास करेंगे, क्योंकि वह क्षेत्र परमेश्वर ने अब्राहम की सीमाओं में उसे दिया था। अश्कलोन भूमध्य सागर का एक मनोरम रेतीला तट है, परंतु मैं आज के अश्कलोन को भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व इसराइल एक बार और विस्थापित किया जाएगा। अब वह पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान करता है, अर्थात इसराइल के पड़ोसी राष्ट्रों पर। सपन्या 2:8-9 में लिखा है, मुआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अमोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वह मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान और अमोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वह देशों का भ्रमण करता है और उसने कई देशों का भ्रमण किया है और सबसे गरीब देश जो उसने वहां देखा वह जॉर्डन हाशिमाइत राज्य है, जो प्राचीन युग में मोआब और अमोन था, आज उनकी राजधानी अमान है। आप उससे अधिक उजाड़ देश दूसरा कभी और कहीं नहीं देखेंगे। यह सब भविष्यवाणियों की पूर्ति है। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर जो कुछ कहता है वह उसे पूरा करता है। आज हम सबके जीवन के लिए भी यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन की उन बातों को सुन करके हम यूं ही चुपचाप ना बैठे रहें, परंतु इस बात को जाने कि परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है, हमें सचेत कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, ताकि हम अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो निश्चय ही जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको अवसर दे रहा है, ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएं। इसके लिए आपको प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने देना है। उसके बारे में आप सुने जाने और उसकी निकटता में आए, निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मेरे मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें, उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस चल, मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता।